نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. آج آیت نمبر 148 سے 162 تک ہم کریں گے. آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہم کور کریں گے ان میں ایک اہم ٹاپک ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یعنی کون سی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، یعنی باتوں میں سے بھی کوئی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ٹاپک ہے اہم آج، اور آج اہم ٹاپک دوسرا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو کیا ہوگا، اور کیا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا کوئی ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے؟ کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آئیں گے؟ تو اور آئیں گے تو کیا کریں گے وہ؟ ان کا دنیا میں آنے کے بعد کیا کام ہوگا، وہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ یہودیوں کے جرائم کے بارے میں بات آئے گی، تو جو الحمدللہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، مگر یہ دو ٹاپک نئے ٹاپکس ہیں. اور اسی کے علاوہ ایک تیسری بات، جو لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں رسول کو نہیں مانتے، ان کا کیا ہے؟ اللہ کو تو مان رہے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں اگر رسول کو نہ مانے، یہ ہمارا خیال ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں اس بارے میں، وہ بھی دیکھیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یحب اللہ، نہیں محبت کرتا اللہ، نہیں پسند کرتا اللہ تعالیٰ کس چیز کو؟ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس چیز سے محبت نہیں کرتا. ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا ہے نا کئی جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا ہے فلاں سے، فلاں سے جو بخیل ہے اس سے نہیں کرتا، جو مختال الفخور ہے اس سے نہیں کرتا، جو خوانہ نسیمہ ہے اس سے نہیں کرتا. لیکن یہاں پر ایک نئی بات ہے جو ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، کیا چیز ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. الجہرا، بلند آواز کرنا، بلند یعنی زور سے کہنا، یا اس کو آپ ایسے لگ سکتے ہیں اعلانیہ کرنا، ظاہر کرنا، کھلم کھلا کہنا. بسو ای سو کا، سو برائی کو کہتے ہیں. ایک ہے حسنا وقولوا للناس حسنا آتا ہے نا، تو ایک ہے اچھا بولنا اور ایک ہے بری بات. بری باتوں میں کون کون سی باتیں آ جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مین القول، قول میں سے، بات میں سے، باتوں میں سے جو بری باتیں ہیں ان کو اعلانیہ کرنا، ان کو کھلم کھلا بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کوئی بھی انسان جو کوئی بات کرتا ہے اور اس بات میں کوئی برائی ہوتی ہے، چاہے کسی انسان کی برائی ہے، چاہے وہ بات اٹ سیلف بری ہے، جیسے کہ گالیاں دینا، یا اس میں کوئی ہرٹ فل بات ہے، ہرٹ کرنے والی بات ہے کسی کو، یا اس میں بد تہذیبی ہے، بدتمیزی ہے، یہ بھی تو سو ہوا نا، یا اس میں کسی کی برائی ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسی بات ہے جس میں الفاظ گندے ہیں، گھرے ہوئے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یا نیگیٹو بات ہے، یا ایسے کوئی لطیفے ہیں، ان کو کھلم کھلا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یا اس میں کوئی بے شرمی کی بات ہے جو شرم کسی منافی ہے، حیا کے منافی ہے، وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں نہیں پسند کہ آپ ان کو کھلے عام بیان کریں، لوگوں میں بیان کریں. इल्ला सिवाय एक एक्सेप्शन है इन बातों को बयान करने की, और वो है मन जुलिम, जिसपे जुल्म किया गया। हाँ वो जरूर कर सकता है कि अपनी शिकायत अपनी फरियाद किसी को कर ले, फिर वो ना गीबत होगी ना वो किसी की बुराई होगी, क्योंकि उसके ऊपर जुल्म हुआ। ठीक है। अच्छा अब इतनी बात, इस बात में बड़ी गहराई है और इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये कि हमें कहा जा रहा है कि देखें, हम सू को जहरी तौर पे बातों में से जो सू की बातें हैं ना, बुरी बातें हैं, उनको ऐलानिया ना करें। अगर आप नोटिस करें तो आजकल ये करना बहुत आसान हो गया है। पहले सू को करना, सू की बात का करना कितने लोगों में आप कर सकते होंगे, 1 2 4 एक मजलिस में कर सकते होंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आप फेसबुक पे किसी के बारे में भी कोई बुराई लगा देते हैं, किसी का कोई स्कैंडल बना देते हैं, किसी के ऊपर कोई तोहमत लगा देते हैं, कोई किसी की गीबत कर देते हैं, तो कितने हजारों लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। यहां पे बताया गया आप ऐलानिया ऐसी बातें नहीं कर सकते, और ना ही ये कर सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, मैंने उसको एक्सपोज कर दिया। जी हमने तो एक्सपोज कर दिया, देखें ये बात तो आपको कभी पता ही नहीं होगी, हमने जो उसको एक्सपोज किया है, ये सारी क्या बातें कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला तो क्या चाहता है कि मोमिन के ऐबों पे भी आप सतर करें, उनको ढांपें। आज आप किसी का ऐब ढांपते हैं तो अल्लाह ताला कयामत के दिन आपके ऐबों को ढांपेगा। तो सबसे पहली क्या बात हो गई, ऐब नहीं किसी का उछालना। ठीक है। किसी के अंदर बुराई कोई देख ली है, कोई बात कोई किसी की पता चल गई है, उसकी बेटी उसके साथ इन्वॉल्व है, वो उसको मैंने फलाने जगह पे ऐसे देखा था, वो तो ये करती है, उसके तो ऐसे तरीके हैं, मैं तो उसके घर गई थी, हमने तो ये नोट किया, और उस दिन जो वो मिली थी तो वो ये कर रही थी। अब वो उसकी बुराई की बातें हैं, अब उसको उछालना, उसको लोगों में बयान करना, ये है जहर बिस्सू। जब भी हम जहर बिस्सू करने लगे तो एक बात को ना भूलिएगा कभी कि ला युहिब्बुल्लाह। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो फिर तो ठीक है, जो मर्जी करते रहे, लेकिन जिसको परवाह है ना कि मेरा अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता, वो जरूर केयरफुल हो जाएगा। देखिए हम कितनी ही दफा ये देखते हैं कि मेरे हस्बैंड है ना ये बात पसंद नहीं करते, कि ये कह के हम कितनी बातों से रुक जाते हैं। इसी तरह हम कभी कहते हैं बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता, हमने हर एक की पसंद को रखा हुआ है अपने जहन में कि कौन किस चीज को पसंद नहीं करता, और हम उसके मुताबिक चलते हैं। हत्ता के हम ये भी देखते हैं कि लोग क्या पसंद नहीं करते, अगर लोग कोई चीज को पसंद नहीं करते तो हम कहते नहीं, फिर आपको पता है ना, फिर लोग ये कहेंगे ये कहेंगे, आजकल ये ट्रेंड नहीं है। ट्रेंड नहीं मतलब क्या है कि लोगों को ये पसंद नहीं है आजकल, आजकल ऐसे नहीं होता। तो हम ये बहुत नोटिस करते हैं कि ला युहिब्बुन्नास, नहीं पसंद करते लोग, मगर क्या कभी हम ये भी सोचते हैं कि अल्लाह ताला नहीं पसंद करता किसी चीज को। लोगों को भी देखते हैं, हस्बैंड को भी देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की पसंद और नापसंद को भी कभी देख के चलते हैं कि अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद है। एक इसमें क्या मैंने बात आपको बताई कि लोगों के ऐबों को उछालना, अब वो चाहे सोशल मीडिया पे उछालें आप, चाहे अपने मजलिसों में उछालें आप, चाहे अपनी मैके में जाके अपने ससुराल के ऐब उछालें आप, ये लोग तो ये करते हैं, ये लोग तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, तो वो क्या है, वो जहरा बिस्सू है। ठीक है। अच्छा इसी तरह फिर अपने ऐप भी ना उछालिए, अपनी भी बातें जो बुरी हैं उनको भी उछालने की जरूरत नहीं कि मैं तो ऐसे मैं तो ये, वो भी नहीं, वो भी बुरी बात है, किसी के भी नहीं ऐप उछालने, अपने भी नहीं उछालने। ठीक है। इसी तरह नंबर टू बात लिखिए, गुनाहों की तशहीर ना करें। एक तो हो गया ना लोगों के ऐब, एक है गुनाह, गुनाहों का ये तशहीर करना कि आजकल तो ये हो रहा है, आजकल तो वो हो रहा है, आजकल तो फलां ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं। चाहे वो कोई फहाशी के काम है, चाहे वो कोई और गलत चीजें हैं, वो हम वो हमारा एक फेवरेट ये भी टॉपिक होता है ना कि ये आजकल हो रहा है, आजकल शादियों में ये हो रहा है, आजकल लड़कियां ये कर रही हैं, और वो बुरी बातें हैं, उससे क्या होता है, उसका क्या नुकसान होगा? देखिए, वो बुराई जो है ना, वो आम हो जाएगी, लोग उसको देख देख के उसके, या सुन सुन के उसके आदी हो जाएंगे। जैसे ये आप लोगों को दिखाते हैं ना ड्रामों में, फिल्मों में, क्या होता है, एक वक्त के अंदर ऐसे ड्रामे दिखाए जाते थे जिनमें मियाँ बीवी को एक बेड पे भी नहीं दिखाया जाता था, अलग अलग बेड से दिखाए जाते थे। और आज तो क्या हालात चल पड़े, क्योंकि लोग फिर उन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करने लगते हैं, उनका जहन कबूल करने लगता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है। लोगों को इंस्पिरेशन मिलने लगती है, लोगों को गुनाह के आइडियाज आने लगते हैं। अब चाहे ये फिल्मों ड्रामों में है, चाहे हम अपनी आम गुफ्तगू में कर रहे हैं, चाहे कोई मिंबर पे खड़ा हो के इमाम वो खुतबे दे रहे हैं, या कोई दर्स दे रहे हैं और उसमें गुनाहों की तशहीर कर रहे हैं, आजकल तो ये, आजकल तो ये। अब वो आजकल आजकल करते करते कितनी बातें जो लोगों को पता ही नहीं होती, वो वहां से, भाई देखो, हर हर जमाने में बुराई तो रही है, हर जमाने में ये चीजें रही हैं कि बुरे काम होते रहे हैं, लोगों ने बुराइयां भी की हैं। लेकिन अब आप कहने शुरू कर दें कि नहीं, आजकल तो ये हो रहा है, आजकल तो ये, अब क्या होगा, वो चीज आम होने लगेगी, और लोगों को सुन सुन के फिर ऐसे लगेगा कि ये कोई बड़ी बात ही नहीं रह गई। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखें, पहले वक्त के अंदर किसी का कत्ल करना कितनी बड़ी बात बन जाती थी, आज आप देखें, आपको ये न्यूज में या इसमें इतने दिखा देते हैं, 30 लोग मर गए, 40 लोग मर गए, तो हमें कुछ भी नहीं होता, हम कहते हैं अच्छा मर गए, चलो ठीक है, अनलेस को कोई 100 200 का फिगर आ जाए तो फिर हमें होता है कि अच्छा इतने लोग हो गए, वरना 4 6 10 लोगों का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई हादसा हो गया, चोरी डाके हो गए, कोई हमें फर्क पड़ता है? क्योंकि ये चीजें आम हो गई हैं, तो गुनाहों की तशहीर से ना वो चीज कॉमन हो जाती है माशरे में, इससे माशरे को नुकसान होता है। ये चीजें ना सिर्फ इंसान की इंडिविजुअल लाइफ के लिए बुरी हैं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए बुरी हैं। देखिए, हर कोई बुराइयों की तशहीर करने लगे, जो कि हमारे फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, हर कोई, बस हर जिस मजलिस में बैठेंगे, ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, फला ऐसा हो गया, ऐसे हो। तो मुझे बताएं कि वो अच्छी, जो माशरे में जो अच्छी चीजें हैं, जो नेक ट्रेंड्स हैं, वो तो कहीं बिल्कुल दब जाएंगे, और हर कोई कहेगा हम तो इससे तो ज्यादा अच्छे हैं। कोई बात नहीं, हम इतना तो नहीं करते ना, जितना हम बुराई कर रहे हैं वो तो इससे बहुत कम है। उनको अपनी बुराइयां छोटी लगने लगेंगी, और उनको लगेगा ये बुराइयां अब कोई बड़ी बुराइयां ही नहीं रह गई, ये तो अब सारे करते हैं। हालांकि शायद वो चंद एक लोग कर रहे हैं, सारा माशरा तो नहीं वैसा कर रहा होता, मगर उन चंद लोगों को लेकर हम क्या कहते हैं, आजकल ये तो इतना कॉमन है, आजकल ये, वो सारी चीजें फिर कॉमन होने लगती हैं, वाकई कॉमन हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें इन बातों से भी महफूज रखे, कभी कभी हमें बात करते हुए नहीं पता चलता, लेकिन अभी अब से हमने इन चीजों को भी सामने रखना है कि हम ऐसी बातें ना करें। इसी तरह कौन सा नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर हो गया, फहाशी की बातें, फोहश बातें, बेशर्मी की बातें, बेहयाई की बातें, कहीं पढ़ ली हैं या आपके सामने आ गई हैं, इत्तेफाक से आपने देख लिया, अब जरूरत नहीं है कि आप उसको बयान करें, इधर उधर उसको फैलाते फिरें। यानी ऐसा हमारा हमारा किरदार ऐसा ना हो जैसे गंदी मक्खी का होता है। पता है गंदी मक्खी क्या करती है, शहद की मक्खी तो रस चूसती है ना, और रस चूस के और फिर शहद बनाती है, इधर से अच्छी बात ली, उधर से अच्छी बात, एक फूल पे गई, दूसरे फूल पे गई, वो गंदगी पे नहीं बैठती, वो शहद इसी तरह बनता है कि वो फूलों का रस चूसती है। हमने शहद बनाना है, अगर हम गंदगियों पे बैठेंगे, कूड़े करकट पे बैठेंगे, तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, एक गंदी मक्खी क्या करती है, वो हर जगह गंदगी पे बैठती है, और फिर उसका मिजाज क्या है, गंदगी ही उसका मिजाज बन जाती है। अगर हम भी गंदी चीजें हर जगह से कूड़ा करकट जमा कर रहे हैं, मीडिया से भी हमें ये मजा आता है कि आज आज देखो क्या बात है, कोई सनसनी की बात हो, कोई ऐसी फहाशी की बात है ना, फलां के साथ फलां का शुरू हो गया, फलां फलां के साथ इन्वॉल्व है, या आज तो एक बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा कर, वो हम बड़े गौर से सुनते हैं। अच्छा, कोई रेप का वाकया हो जाए, उसको तो खोल खोल के पढ़ते हैं पूरा पूरा, ये फहाशी है, इसको आगे फैलाना, इसको बताना, हाँ, इल्ला मन जुलिम वो अलग बात है कि हम आगे उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, कि जबकि कोई चीज को रेप्रमेंड करना हो यानी कुछ चीज की इसलाह करनी हो वो एक अलग बात होती है। अगर इसलाह के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज बयान की जाए कि ये चीज ऐसे है और इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए और चलो मिलें और हम इसके खिलाफ खड़े हों और इसके खिलाफ कोई मीडिया में मुहिम चलाएं या कुछ, वो एक अलग बात है। लेकिन बस ऐसे ही चस्के लेना, जिसको हम कहते हैं ना चस्के लेना, तो बस इधर से सुना, इधर से चस्के लिए, उधर से लिए, उधर की बातें। आज तो इतना दुख होता है कि बाज दफा लोग इन चीजों को पसंद करते हैं कि टॉपिक्स भी ऐसे मिले हमें जिसमें कोई चटखारे हो, जिसमें कोई ऐसी फहाशी की बात हो। नहीं, ये हमारा मिजाज बन गया। हम गंदी मक्खियां तो नहीं बन गए कहीं, या हम जा जाके उन जगहों पे बैठना पसंद करते हैं जहां से हमें कोई ऐसी चटखारों की बात पता चले। आप एक दर्स का नाम रख लें, आओ कुरान की तरफ, इसकी तरह कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन आप कोई ऐसा मौजू रख दें जिसको कहते हैं कि ये इसके ऊपर कोई बात नहीं करता, हम उसके ऊपर बात करेंगे, ऐसे टैबू टॉपिक्स उठा के रख ले आते हैं, और फिर लोग देखें कितने खुश होते हैं उनको सुन के और उनको उसमें कितना मजा आता है। हालांकि अल्लाह ताला ऐसी बातों को तो नहीं पसंद करता कि आप इस पे शोज करना शुरू कर दें, आप इसके ऊपर। और देखिए, एक इल्म लेना अलग बात होती है। इल्म जब अल्लाह ताला ने आपको कुराने पाक में इल्म दिया है, मियां बीवी के मामलात भी डिस्कस हुए हैं कुरान में, लेकिन कितनी खूबसूरती से, आओ लामस्तुम उन्निसा, या जब तुम छुओ औरतों को, कितने ढके छुपे अल्फाज के अंदर बात हुई है। और बाज दफा हम इन्हीं चीजों को ऐसे खोल खोल के रखते हैं कि एक इंसान तसव्वुर में सब कुछ जैसे देख ले के उसके सामने हो रहा है। इस तरह हम बातों को बयान करते हैं और वो टॉपिक्स उठा के लाते हैं। आप एक लफ्ज कोई, अल्लाह ताला हमें माफ कर मारे, कि एक लफ्ज, एक सेक्स का लफ्ज किसी टॉपिक में ले आए, फिर देखें लोग कितनी खूबसूरती से उसको अटेंड करते हैं, कितने शौक से भागे जाते हैं। नहीं नहीं जी, इसके ऊपर कोई बात नहीं होती। अगर आपको कोई मसला पूछना है, आपको इल्म लेना है, वो एक अलग बात है। लेकिन इन मौजूआत को इस तरह खुलेआम डिस्कस करना कि उनके अंदर कोई हया ही ना रहे, ये अल्लाह ताला को पसंद तो नहीं है। इसी तरह गंदे लतीफे, आप देखें बाज लोग, और उनको कोई चीज नहीं याद रहेगी लेकिन ये चीजें याद रहती हैं कि गंदे लतीफे आगे आगे बयान करते रहना, ये उनको इसमें मजा आता है और लोगों को भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। और गलीज लतीफे, ये भी एक, देखिए ना, एक इंसान का जौक होता है, जो पाक साफ इंसान होता है वो अपना दामन कीचड़ से बचा के चलता है। वो गंदगी के साथ पास से गुजरेगा भी ना तो अपने दामन को समेट लेगा कि मेरे ऊपर कहीं गंदगी ना लग जाए। लेकिन जब एक इंसान का मिजाज ऐसा हो जाता है कि उसको गंदगी पसंद आने लगे, तो फिर सोचें कि वो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान पसंद नहीं है फिर, कि हम वो बन जाएं जो के सारे मुआशरे में जिनका काम ये है हर जगह गंदगियां पहुंचाना, मैं यहाँ पे भी पहुंचाऊं, यहाँ पे भी पहुंचाऊं, इस मजलिस में बैठी इधर भी ये बात करूं, उधर भी करूं, उधर भी करूं, मेरा काम क्या यही रह गया? मैं हर जगह गंदगियों को पहुंचाती रहूं, तो ये भी एक नापसंदीदा बातों में आ जाती है। इसी तरह तकलीफ दे बातें करना, ऐसी बातें जो दो लोगों को हर्ट करें, इनमें बदतमीजी भी आ जाती है, गंदे अल्फाज बोलना भी आ जाते हैं, गालियां देना भी आ जाता है, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं। बस खातीन अपने बच्चों को ही देती हैं, तो ये चीज को निकाल देना है जिंदगी से, क्योंकि अल्लाह ताला को ये नहीं पसंद। इसी तरह हर्टफुल बातें दूसरे को जो तकलीफ दे दे, अब वो पता है कि ये बात दूसरे को तकलीफ देगी लेकिन आपके लिए वो मजाक है। आप कहते हैं नहीं तो हम तो मजाक ही कर रहे थे, तुम तो ऐसे ही। नहीं, अल्लाह को ये पसंद नहीं कि आप दूसरों को हर्ट करें, नंगी बातें करें, यानी जिनके अंदर कोई हया ना हो। तो खवातीन खवातीन की मजलिसों में ऐसे करती हैं, मर्द मर्दों की मजलिसों में अक्सर ऐसा करते हैं। मजलिस किसी की भी हो, ये नहीं कहा गया कि आप औरतें औरतों में बैठ के ये बातें कर सकती हैं, मर्दों में ना जाके करें, ये नहीं कहा गया। अल्लाह ताला को पसंद ही नहीं है ये बातें। अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हया वाला है, तो जो हया वाला होगा उसको बेहयाइयां पसंद होंगी। तो आपस में गाली गलौज करना भी इसमें आ गया, और इसको समझना कि ये गालियां देना तो ये तो हमारा तकिया कलाम है, लानते भेजना गालियां देना ये दुरुस्त रवैया नहीं है। आप देखें इल्ला मन जुलिम, मगर किसी के ऊपर जुल्म हो तो वो किसी को, हाँ अच्छा जहरा बिसू में बद्दुआ देना भी आ जाता है, बद्दुआ देना, बद्दुआएं भी ऐसे ही नहीं बैठे बैठे किसी को देते रहना कि भाई बद्दुआ किसी को भी कोई भी इंसान है तो उसको आप बद्दुआएं देने बैठ गए। हाँ कोई वो दे सकता है बद्दुआ जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, लेकिन अगर वो भी सब्र करेगा तो वो बेहतर है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कोई चीज चोर चोरी करके ले गए तो वो उनपे बद्दुआ करने लगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुन के फरमाया क्यों उसका बोझ हल्का करती। तो तुम मतलब बद्दुआ कर सकते मगर उतनी ही जितना के नुकसान हुआ, बार बार उसी बात को कहते जाना उससे नहीं हासिल कुछ भी, उसका बोझ हल्का हो जाएगा और बोझ आपके ऊपर पड़ जाएगा। इसी तरह हजरत हसन बसरी का एक कौल है, वो आप इब्ने कसीर में भी देख सकते हैं कि वो फरमाते हैं कि बदुआ नहीं करनी चाहिए बल्कि ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुमा आइन्नी अलैहा, अल्लाह तू मेरी मदद कर इस पर, कोई यानी आपके ऊपर जुल्म करता है ना तो आप ये कहते हैं अल्लाह इसके खिलाफ मेरी मदद कर और मेरा हक इससे दिलवा दे, वस्तखरिज हक्की मिन्हु, यानी इस मेरा हक दिलवा दे या अल्लाह तू मेरी मदद कर इसके खिलाफ। कितनी प्यारी बात है ना। तो मजलूम जालिम को कोस सकता है मगर ये उसमें फिर ध्यान रहे कि हद से ना बढ़ जाए, अगर वो हद से बढ़ गया तो उल्टा वो जालिम बन जाएगा, यानी अगर किसी ने जुल्म किया है तो उसके जुल्म की बात बताई जा सकती है, लेकिन अगर वो उसने तो जुल्म इतना सा किया था, इसने जब बताया तो वो अपने भी जो ग्रजेस थे और जो अपना गुस्सा था वो भी इसमें शामिल हो गया, और बात इतनी सी थी उसको इतना बढ़ा के बयान कर दिया, ये दुरुस्त नहीं है फिर। यानी एक गुंजाइश मिलती है जहरा बिसू की और वो है इल्ला मन जुलिम, लेकिन जो जिस पे जुल्म हुआ है वो भी कहीं जालिम ना बन जाए, वो तो मजलूम रहेगा जब तक कि उसने वो अपनी हद में रहा। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो गालियां देने वाले का बबाल उस पर है जिसने गालियां देनी शुरू की, तो कोई कहे किसी को तुम झूठी हो तुम बड़ी मक्कार हो तो वो उसको इतना कह सकता है नहीं तुम झूठी हो और तुम मक्कार हो, इतना कह दिया तो बस ठीक है, लेकिन अगर वो ये कहता है तू भी झूठी तेरा तो पूरा खानदान ही झूठा है तेरे तो फलाने भी झूठे थे और वो सारे ही मक्कार थे, तो फिर ये क्या है, ये अब हद से बढ़ जाना है, समझ आई ना। यानी इल्ला मन जुलिम, जिस पर जुल्म हुआ है वो भी ये ना हो कि वो मजलूम होने की बजाय वो ही जालिम बन जाए। इसी तरह इब्ने मालिक अज्जरजी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि गाली देने वाले को यानी बुरा कहने वाले को बुरा तो कह सकते हैं लेकिन बोहतान बांधने वाले पर बोहतान नहीं बांध सकते, ऐसा नहीं हो सकता, इतने हद तक तो आप कर सकते हैं लेकिन ये फिर हद से बढ़ जाना होगा अगर किसी ने झूठा इल्जाम किसी के ऊपर लगाया है कि ये ऐसा है, मसलन बोहतान ऐसा कोई मिसाल के तौर पे किसी के ऊपर जिना का लगा दिया या किसी के ऊपर कोई और ऐसा बोहतान बांध दिया तो वो भी उसके ऊपर ये बोहतान नहीं बांध सकता, इसमें भी ख्याल रखना। इस तरह हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि जो शख्स किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाए और मेजबान उसका हक की मेहमानी अदा ना करे तो अब इसके लिए जायज है कि लोगों के सामने अपने मेजबान की शिकायत करे जब तक कि वो हक की ज़ियाफ़त अदा ना करे। अच्छा पहले जमाने तो बहुत ही ज्यादा इस चीज का होता था ना कि मेहमान बेचारा डिपेंड ही करता था मेजबान के ऊपर, आज भी मेहमान की कदरों कीमत है, मेहमान नवाजी करनी चाहिए और अगर किसी ने नहीं की तो उसकी बात कह सकता है, लेकिन इसके अंदर एक बात को याद रखिए, हम जब आज के दौर में किसी की मेहमान नवाजी की शिकायत करते हैं तो हम पता है कैसे करते हैं, लो एक ही डिश बनाई हुई थी क्या फायदा, नमक इतना नमक डाला हुआ था फलाने ने वो तो इस तरह से नहीं हमें पूछा और डिजर्ट तो हमें दिया ही नहीं और मीठे में ये नहीं था या गोश्त तो हमें ये वाला हम खाते हैं, उसने तो सिर्फ सब्जी बनाई हुई थी, तो ये चीजें फिर शिकायत वाली नहीं है। ठीक है, उसने एज लॉन्ग एज आपका हक के मेहमानी अदा किया है वो काफी है। अब हम शादियों वगैरह से आते हैं तो कितनी बड़ी हमारे पास लिस्ट होती है ना, कि वो ऐसे नहीं हमें पूछा, वैसे नहीं पूछा, वहां नहीं बिठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो हमारा हक नहीं है कि हम ये करें। उसने आपको एंटरटेन किया, उसने आपको खाना खिलाया, इतना ही काफी है। अच्छा, इस तरह एक वाकया आता है कि एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरा हमसाया मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाता है। तो आपने फरमाया, एक काम करो, अपना माल, घर का जो है ना सामान वगैरह, घर से बाहर रख दो। उसने ऐसा ही किया, रास्ते पे ही अपना सामान रख के बैठ गया। अब जो भी गुजरता था पूछता था, क्या बात है, तुम क्यों यहाँ पे बैठते हो? वो कहता, मेरा हमसाया मुझे सताता है, मैं तंग आ गया हूं उससे। तो जो भी गुजरने वाला होता वो उसके हमसाये को बुरा भला कहता कि अल्लाह की मार हो ऐसे पड़ोसी पे, कोई कहता अल्लाह गारत करे ऐसे हमसाये को। तो जब हमसाये को इसकी खबर हुई कि मेरी तो रुसवाई हो रही है, तो फिर वो उसने आके मिन्नतें की कि भाई घर चलो, अब मैं कभी तुम्हें नहीं सताऊंगा। तो यानी एक तरह से उस चीज का अजाला करने के लिए, किसी को अगर कोई तकलीफ पहुंच रही है तो उसके लिए वो जाके किसी की शिकायत भी कर सकता है, किसी की बुरी बात भी बयान कर सकता है। जाहिर है बयान करेगा ही तो दूसरे को पता चलेगा ना कि भाई इसका क्या सलूशन देना है। इस सूरत के अंदर जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो अपनी बात पहुंचा सकता है, वो आगे बयान कर सकता है। तो हमें क्या पता चला कि कब हम किसी की बुरी बात को आगे कर सकते हैं, जबकि कोई जुल्म हुआ हमारे ऊपर। लेकिन जुल्म होने के बाद भी ये मतलब नहीं है कि जिस जगह बैठे हैं उधर हस्बैंड की बुराइयां, ससुराल की बुराइयां, हमसायों की बुराइयां, फलां की बुराइयां, फलां के जहां बैठे वहां पे यही टॉपिक शुरू कर दिया, ये मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब है कि यानी आप किसी ऐसे इंसान के पास अगर जाते हैं कि यहाँ पे मैं जाऊंगी और यहाँ पे शिकायत करूंगी, तो यहाँ पे इसका कोई अजाला हो सकता है। जैसे वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि ये मेरे साथ ऐसे करता है, मैं क्या करूं अब? अब कोई सवाल आके पूछता है, अब जब मिसाल के तौर पे किसी टीचर के पास, किसी आलिम के पास कोई जाके सवाल पूछते हैं, तो जाहिर है उनको बताना पड़ेगा। अब ये फिर जहरा बिस्सू में नहीं आता, इसलिए क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि इसके ऊपर जुल्म किया गया, इसके साथ कोई ज्यादती हो रही है। अब घर में औरतें मार खा रही हैं, ये कर रही हैं, अब वो कहें कि अच्छा हमने तो किसी को बताना ही नहीं है क्योंकि फिर ये तो मना किया गया। नहीं, जिस पे जुल्म हो रहा है वो जाके अपनी बात को बयान कर सकता है। मगर मैंने जैसे आपको कहा कि फिर ऐसे ही नहीं कि एक चर्चा ही लेके बैठ जाए, एक अपना जिधर बैठे उधर ही अपनी कहानी शुरू कर दे, ये नहीं होना चाहिए। और फिर मकसद ये भी नहीं होना चाहिए कि जरा मैं इनको बदनाम करती हूँ, बस मकसद ये होना चाहिए कि इसका हल निकले, ये मकसद होना चाहिए। अपने गुस्से को निकालना मकसद नहीं होना चाहिए। इसी तरह किस वक्त में आप जहरा बिस्सू कर सकते हैं, जब आपने कोई फतवा लेना है किसी से, या आपने किसी से कोई मशवरा लेना है, या आपने किसी से कहना है कि आप मुझे बताएं इसका हल क्या है। तो ये समझ आ गई ना कि उस वक्त आप किसी को बात बता सकते हैं, किसी के मशवरा लेने के लिए, या किसी से मदद चाहिए आपको कि आप मेरी हेल्प करें, अब मैं क्या करूं, मैं इस मुसीबत में फंस गई हूं, ये मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे में कोई लड़की अपने मेके में भी जाके बताती है तो ठीक है। बाज ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिसके अंदर उनको बताने की जरूरत थी, मगर छोटी छोटी बातों को लेके नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसे मामलात हों, वाकई कोई ऐसी बात हो तो बतानी चाहिए ताकि उसका हल निकले, जो जुल्म कर रहा है उसको जुल्म से मना किया जाए। और देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था ना, पिछले पारे में भी पढ़ा था कि अगर कोई शिकाक हो जाए, मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा, कोई इख्तलाफ हो जाए, तो हकम को बिठाओ। अब हकम को अगर पता ही नहीं है हो क्या रहा है, तो फिर वो कैसे बैठेगा? एक उधर का हकम बैठे, इधर का हकम बैठे, तो फिर बैठाना पड़ता है ना। लेकिन अगर हम जगह जगह यही बातें करते फिरेंगे ना, तो याद रखें लोग तंग आ जाते हैं। एक दिन लोग कहेंगे इसका तो काम ही यही है, ये तो बस रोते ही रोने रोती रहती है, इसकी तो बस मुंह पे हर वक्त शिकायतें ही होती, कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा, तो इसमें आपका ही नुकसान है। तो अपनी बात को खुद हल्का ना करें। बल्कि उस वक्त में वहां लेकर जाएं बात जहां पे वाकई कोई इसका मदावा हो सके, जहां पे कोई नसीहत मिल सके, जहां पे कोई मशवरा मिल सके। इस तरह ही अगर कोई ऐसा है, मिसाल के तौर पे कोई खुल्लम खुल्ला बुराई करने वाला है, खुल्लम खुल्ला मसलन कोई शराब पीता है, खुल्लम खुल्ला कोई कोई ऐसा बुराई का काम करता है, तो उस वक्त भी उसकी बात करना, उसकी बात का बयान करना, इसमें कोई हर्ज नहीं होता, ताकि लोग उससे होशियार रहें। मसलन किसी की करप्शन है, कोई धोखेबाज है, तो उसकी फिर अब गीबत नहीं होगी, क्योंकि ये वो ऐसी मिसाल के तौर पे कोई इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। अब आप लोगों को उससे खबरदार करना तो जरूरी है ना, नहीं वो नहीं 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 ये तो गीबत हो जाएगी, नहीं आप उसको बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये इंसान ऐसे है और इस्लाम के खिलाफ ये, इसके ये एजेंडा है, ये इस चीज के ऊपर करता है, या इसके ये ख्यालात है। इसी तरह अगर किसी का नाम ही बुरा पड़ चुका है, मिसाल के तौर पे जैसे किसी का नाम ही है कि भाई वो लंगड़ा जो वहां पे रहता है, तो अब वो उसका नाम ही पड़ चुका है, अब आप उसको तहकीर की वजह से नहीं कह रहे, मगर जैसे अब यहाँ पे कहते हैं ब्लैक, अब ब्लैक तहकीर की वजह से नहीं कह रहे होते कि हम उनको बुरा समझते, वो अपने आप को भी ब्लैक ही कहते हैं, उनकी ये पहचान बन चुकी है, ये उनकी पहचान है कि कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई ब्राउन है, इस तरह से कह के पुकारा जाता है, और इसके अंदर कोई किसी को बुरा नहीं कहा जा रहा, तो वो उनकी पहचान जब बन जाए, तो फिर भी अगर उनका तारुफ इसी चीज से होता है, वो माशरे में उन्हीं नामों से मशहूर हैं, तो फिर भी उसमें कोई हर्ज नहीं। तो समझ आ गई कि किस बातों की वजह से आप जहरा बिसू कर सकते हैं। ठीक है, जब किसी ने किसी ऊपर जुल्म किया है, बुराई को खत्म करने के लिए कोई बुरा काम कर रहा है, तो उसको नेकी की तरफ लाने के लिए किसी अदालत में अगर जाते हैं, अदालत में भी तो जाके बताना पड़ता है, या किसी आलिम दीन से आप बात करते हैं, या किसी से मशवरा पूछते हैं, या किसी कोई नसीहत की बात चाहते हैं, या किसी से फैसला कराना है आपने कि हम बताएं कि हम में से कौन सही है और कौन गलत है, ये इसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, ठीक है, या आप दूसरे मुसलमानों को किसी के शर से बचाना चाहते हैं, तो तब भी ये आप जहरा बिसू कर सकते हैं। और मुसलमानों को जर से पहुंचाने में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मसलन कोई शादी कहीं करने लगा है, तो वो आपसे मशवरा पूछता है कि जी आपके हमसाए में ये फलां लड़का रहता है, ये कैसा है, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम वो पूरी उसकी दास्तानें खोल के बैठ जाए, पता है एक रात मैंने देखा खिड़की से वो आ रहा था, वो तो ऐसे था, वो था, और ये नहीं, फिर आप मुनासिब तरीकों से आप उसको बता दें कि देखें बेहतर है कि आप यहाँ पे ना करें, जो भी आपने इस तरह से एक ढके छुपे उनकी कहानियां खोल के नहीं बैठ जाना, और इस लड़की का तो पहले उसके साथ फलाने के साथ था और ये था, नहीं, इसी तरह कोई बिजनेस करने लगा है, वो आपसे मशवरा करता है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं जी दूसरा इंसान है ना, इसने फलां के साथ पहले बिजनेस किया था, तो उसको धोखा दिया था, तो आप बेहतर है कि यहाँ पे ना करें, या आप कोई किसी के पास अमानत रखवाने के लिए मशवरा करता है कि जी मैं उसके पास अपनी ये चीज दे दूं, उसको रेंट पे मसलन घर दे दूं, या उसके पास अपनी ये चीज रखवा दूं, या किसी के पड़ोस में रहने के लिए कोई मशवरा करे कि जी कि मैं उनके पड़ोस में घर ले लूं, तो आपको पता है कि वो अच्छे अगर लोग नहीं है, अच्छी वहां पे उनको तकलीफ पहुंचेगी, तो आप बता सकते हैं, या और किसी किस्म का मामला जिसमें दूसरे को तकलीफ या दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है, अगर आपने ना बताया तो ये नुकसान उठा सकता है, तो फिर कोई हर्ज नहीं होता कि आप उसके ऐब को जाहिर कर दें। ठीक है, जैसे एक तालिबे इल्म है, एक स्टूडेंट है, वो पूछता है आके कि भाई मैं फलां तफसीर पढ़ लूं, या मैं फलां कोई आलिम दीन है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं जी, बड़े टीवी पे भी आते हैं, फलां होता है, मैं उनकी क्लासें ले लूं, अब जबकि आपको पता है कि वो सही नहीं है, तो अब आपका काम है कि आप बताएं कि इनकी ये इनकी बिदतें हैं, या ये इनकी चीज है जो कि सही नहीं है, जो इस्लाम के खिलाफ है, मगर किसी की करेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए कि आप उसके किरदार को ही उछालना शुरू कर दें। इन चीजों से भी क्या होता है, ट्रस्ट खत्म हो जाता है ना लोगों का। लोग कहते हैं ये सारे ही ऐसे हैं। इसी तरह किसी इलाके का इंचार्ज किसी को बनाना हो, किसी जगह का इंचार्ज बनाना हो, किसी ग्रुप का इंचार्ज बनाना हो, कोई ऐसी जिम्मेदारी किसी को देनी है और आपसे मशवरा किया जा रहा है और आपको पता है कि ये जिम्मेदारी बंदा नहीं उठा सकता, तो अब आप बताएंगे कि नहीं जी ये तो इसके अंदर ये अहलियत नहीं है ना, कि ये कहे नहीं, मुझे चाहिए कि मैं तारीफें ही करूं, मैं उसकी कोई बात ना बताऊं, ये सही नहीं है। ठीक है, इससे फिर लोगों का नुकसान होगा ना। ये बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? इसके अंदर बड़ी गहराई है, हमें इससे बड़ी बातें पता चलती हैं। देखिए ना, अब ये किसी के बुराई करना या किसी की बुराइयों को उछालना या एक दूसरे को बुरा कहना, बुरी बातें या गालियां, या ये सारे इनके अंदर ये सारे जहर बिसू में आ गए। और आपको मैंने बता भी दी, एक्सेप्शन भी बता दी कि कहाँ गुंजाइश निकल सकती है, वो भी बता दिया आपको। तो ये आप देखें, अगर अच्छा इसके अंदर नकल उतारना भी आता है कि किसी इंसान की नकल उतारी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इसको पसंद नहीं करता कि मैं किसी की नकल उतारूं, चाहे मुझे इसके बदले में फलां फलां चीज भी मिल जाए। क्या अरे, इसी तरह लोगों की बेइज्जतियां करना, मजलिस में बैठ के हम कहते हैं हम नहीं भाई, पीठ पीछे हम नहीं करते, हम तो मुंह पे कहते हैं, और मुंह पे उसको ऐसा बेइज्जत करना, ऐसा बेइज्जत करना कि वो कहे, सोचे कि मैं आज आ ही क्यों गई इस मजलिस में। ये हमारे मिजाज पता चलते हैं, इन चीजों से, हमारी गुफ्तगू से पता चलता है हम हैं क्या, हमारे दिलों में क्या है। ये जो जुबान है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इब्ने आदम सुबह करता है तो उसके सारे अज़ाए जुबान को हाथ जोड़ते हैं, सारे आज़ाद जुबान का इनकार करते हैं, कहते हैं तू हमारे मुतल्लिक अल्लाह से डर, क्योंकि हम तेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर तू सीधी रही हम सीधे रहेंगे, अगर तू टेढ़ी हो गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे। क्योंकि देखे ना, अगर जुबान ने कुछ गलत कर दिया ना, तो सारा जिस्म ही जहन्नुम में जलेगा। जिस्म बेचारा कहता है कि खुदा के लिए तू सीधी रहना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूँ, एक जुबान और एक शर्म का। फरमाया, किसी ने आपसे पूछा या रसूल अल्लाह निजात कैसे होगी, हम कैसे यानी बच सकते। आपने फरमाया अपनी जुबान काबू में रखो, अपना घर कुशादा रखो यानी घर में रहो, और अपने गुनाहों पर रो। लेकिन आप देखें, ये छोटी सी जुबान है लेकिन सबसे ज्यादा गुनाह इसी से होते हैं, सबसे ज्यादा जहरा बिस्सू। यह जाहिर है ये जुबान का ही काम है, मीनल कौल है ना, हाथ तो नहीं ये काम करते। तो इसको काबू में रखना कितना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको कई दफा ये हदीस बता चुकी हूँ कि कोई इंसान जन्नत वाले काम करता रहता है, करता रहता है, जन्नत के करीब हो जाता है, कि हत्ता कि एक दिन वो अपनी जुबान से ऐसा कोई कलमा निकाल देता है कि वो जहन्नमी हो जाता है। लेकिन इंसान जहन्नुम वाले काम करता रहता है, जहन्नुम से करीब होता है, लेकिन वो अपनी जुबान से कोई ऐसा कलमा निकालता है, अल्लाह ताला को इतना पसंद होता है ना वो, कि वो जन्नत में अपनी जगह बना लेता है। तो जुबान ही है, इंसान को गिरा भी सकती है, इंसान को उठा भी सकती है। इससे पता चलता है जुबान से कितनी केयरफुली बातें निकालनी है हमें, कितने हमें मोहतात होना है इस जबान के इस्तेमाल में। अगर इसको ऐसे खुला छोड़ दिया, आजाद छोड़ दिया, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, बस बोलते चले गए जो दिल में आ रहा है, बोले जा रहे, बोले जा रहे, फजूल ही बोले जा रहे, बस बोलना है ना, कुछ बोलते चले जा रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ तो कहीं गिरेंगे, कहीं फिसलेंगे, जरूर कोई ना कोई बात हो जाएगी। तो इन सारी इंपॉर्टेंट आयत है, समझने वाली है, अमल से मुतल्लिक है। अल्लाह ताला इस पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा। अब देखिए लास्ट में अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से भी वो आते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। बात जो होती है ना, उसको देखा नहीं जाता, उसको सुना जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया बातों को अल्लाह सुन रहा है, और अलीम भी है, जो दिल के अंदर भी है उसको भी जानता है, किस नीयत से बात की गई, किसी को लेट डाउन करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, या वाकई मशवरा पूछना चाहते थे। إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أجر تم ظاهر کرو نیکی کو یا تم چھپاؤ نیکی کو. نیکی کی بات کو تو آپ اگر ظاہر کریں یا چھپائیں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ظاہر کرنے کا آپ کو ہو سکتا ہے یہ آئے کہ نہیں نیکی کی باتوں کو تو چھپانا چاہیے, پھر یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ظاہر کر کے کون سی نیکیاں کی جا سکتی ہیں؟ وہ والی جو فرائض میں شامل ہیں, جیسے آپ نے فرض نماز ادا کرنی. اب آپ یہ نہیں کہیں گے او سب بیٹھے ہوئے ان کے سامنے کیسے میں فرض نماز ادا کروں, دیکھیں یہ تو پھر دکھاوا ہو جائے گا تو میں آج نماز پڑھتی ہی نہیں. نہیں, فرض روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ سب آپ علل اعلان کریں, سب کو دکھا کے کریں, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ملے. لیکن جو نفلی عبادت ہے نا, مثلا آپ کی تہجد ہے, مثلا آپ کے ایکسٹرا کوئی نوافل ہیں جو آپ پڑھتی ہیں, مثلا آپ کا صدقہ و خیرات کرنا ہے, ویسے نفلی صدقہ ہے, تو اس کے اندر چھپانا بہتر ہے انلیس کہ آپ کسی کو ترغیب دینا چاہتے ہیں کہ وہ بھی اٹھے اور صدقہ کرے. ٹھیک ہے, تو نیکی ظاہر کرو, ظاہر میں بھی آپ کی نیت ایسی نہیں ہے کہ کوئی دکھاوے کی ہے, کوئی شو آف کی نہیں ہے, یہاں تم چھپا کے کرو. او تعفو عن سوء, یہاں تم معاف کر دو برائی سے, فإن اللہ کہنا عفو ون قدیرہ, یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا. تم برائی سے درگزر کر لو, یعنی پیچھے پچھلی آیت میں کیا کہا گیا, الا من ظلم, جس کے اوپر ظلم کیا گیا وہ اتنا بدلہ لے سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اجازت دی ہے, جتنا کسی کے اوپر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ اسے, دانت کے بدلے دانت, آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, جان کے بدلے جان. آپ کو پتا ہے نا یہ سب آگے بھی آئے گا انشاءاللہ, آپ سورہ مائدہ میں پڑھیں گے. تو ایک نے تھپڑ مارا دوسرا اس کو اتنا ہی تھپڑ مار سکتا ہے, لیکن اگر معاف کر دے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ دیکھیں اب ہمیں اجازت تو ہے اتنا بدلہ لینے کی, کس نے آپ کو ایک بات کہی آپ نے بھی وہ بات اس کو پلٹا کے کہہ دی, اتنا ہی بدلہ ہو گیا. اب انسان بڑی اس میں پڑ جاتا ہے نا آزمائش میں, میں بدلہ لوں کہ میں معاف کر دوں. بدلہ لینے میں کوئی اجر نہیں ہے, آپ کو کوئی ثواب نہیں مل جائے گا, لیکن معاف کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ معاف کرنے سے ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں معاف کر دیا سر پہ چڑھ جائے گی, بہت اور زیادہ اس کو میرے اوپر یہ مطلب زیادتی کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ہے عزت. معاف کرنے سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی یہ عفو و درگزر میں ذکر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف آتی ہے اس میں کہ آپ بہت معاف کرنے والے تھے, لوگوں سے درگزر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یہ کہ وہ عفو غفور معاف کرنے والا ہے, تو یہ تعریف ہوتی ہے کسی کی, اس میں اس کی عزت ہوتی ہے. معاف کرنے میں ذلت نہیں ہوتی, کیونکہ ذلت کی کوئی چیز اللہ کے ساتھ نہیں ہے لگی ہوئی, ذلت کی کوئی چیز رسول کے ساتھ نہیں لگی. تو ہم سوچتے ہیں کہ اس میں ذلت ہے تو ہم اب اس کو اپنے نا پوائنٹ آف ویو کو چینج کریں, اپنی تھنکنگ کو چینج کریں کہ معاف کرنے میں کیا ہے, عزت ہے. معاف کرنا کیا ہے, اچھی چیز ہے, بری چیز نہیں. تم نے کیا اس کو معاف کر دے تو ہم نے معاف کرنے کا ٹھیکہ لیا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کن کن مواقع پہ معاف کیا, اور وہ اس سے بہت بڑے تھے جتنا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا ہو, اس سے بہت زیادہ تھے. تعفو انسو, معاف کر دو برائی سے تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت رکھنے والا. وہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کسی کو معاف کر دو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی نا بڑا یہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اور بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے معاف کرنے کے لیے, کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی برائی کر جائے اور آپ کہہ دیں درگزر کرتے ہیں, ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, کیا کیوں اس نے, کہا کیوں ایسے اس نے, مجھے اس نے یہ, میرے ساتھ ہوا کیوں ایسے. ہم اس کے ڈپریشن میں اور اس کے رونے سے ہی باہر نہیں نکلتے, معاف کیسے کریں گے. और ये जो हम कहते हैं ना, मैं माफ कर सकती हूं लेकिन मैं भूल नहीं सकती इस बात को कभी, आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नॉट फॉरगेट। तो ये याद रखिए कि जो कोई ये कहता है ना, उसने माफ ही नहीं किया, क्योंकि तो माफ करने का मतलब होता है भुला देना। अब आपने उसका कभी जिक्र ही नहीं करना, अब आपने कभी उस बात का चर्चा ही नहीं करना, मेंशन ही नहीं करना, वो है अफू, ताफू है यहाँ पे। माफ करना ना कि उसका निशान भी मिट जाए, निशान भी ना रहे, अगर हम चाहते हैं कि हमें भी अल्लाह ऐसे ही माफ करे। तो ये बात सही कर लें कि माफ करने का मतलब क्या है, कि मैंने अब भुला भी दिया, अब मुझे याद ही नहीं किसने मुझे क्या कहा। तो अपने दिल में जब हम दिल को ट्रैश कैन बना लेते हैं ना, ट्रैश कैन, कि एक तो हम सारी दुनिया से चीजें ले लेते हैं, हम सोशल मीडिया से भी ले ली, मजलिसों से भी गंद ले लिया, वहां से भी ले लिया, और हमारा दिल क्या है, ट्रैश कैन है, उस ट्रैश कैन में हम डालते गए डालते गए। तो अब क्या होगा, ट्रैश कैन से बदबू ही आएगी, खुशबुएं तो नहीं निकल सकती। और फिर किसी के कीने रखे हुए भर भर के दिल में, मैंने माफ नहीं करना, मुझसे नहीं माफ होता, मुझसे नहीं ये होता, तो वो ट्रैश कैन बना के रखा। और इसकी सफाई हर रात की रात करनी है, कि आज रात है तो उसने चलो मुझे कह भी दिया ना, छोड़ो अल्लाह तू मुझे माफ कर देना, पता नहीं मैंने कितने गुनाह किए हैं, मेरे तो गुनाहों का कोई शुमार ही नहीं है, उसने तो एक गलती की होगी। तो छोटी छोटी बातों को लेके ना बैठ जाए, उन्होंने हमें बुलाया नहीं, उन्होंने हमें कार्ड नहीं भेजा, कार्ड पे हमारा नाम नहीं लिखा, फलाने ने मुझे देख के सलाम नहीं किया था, फलाने तो मुंह बना लिया था, दावत पे सबको बुलाया था, मुझे पता चल गया इसके घर दावत थी, हमें नहीं बुलाया, देखो नहीं। ये सब चीजें ऐसे नहीं, दरगुजर करना सीखना है, जाने देना, कभी जाने भी दिया करें, मरे तो सीरियस मैटर्स भी नहीं होते तो हम कैसे पकड़ लेते, अल्लाह ना करे कोई बड़ी बात हो तो फिर तो हम पता नहीं क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, किस किस तरह नहीं तकलीफ दी, जुबान की बातें तो छोड़ें, और किस तरह प्यारों को और किस तरह से टॉर्चर किए गए, किस किन हालात से वो गुजरे, लेकिन देखिए माफी कितनी थी। और ये भी आपको मैं बताऊं, माफ करने का हौसला भी अल्लाह से मांगना चाहिए, और कभी किसी को इतना ना सताएं कि कोई आपको माफी ना करे, ये भी नहीं होना चाहिए, इतनी नहज तक किसी को लेके ना जाए, क्योंकि अगर वाकई किसी ने किसी को इतना सता दिया है और उसे माफ नहीं किया है, तो अब ये मामला कयामत में चला जाएगा। अल्लाह ताला ने तो इनकरेज किया ना माफ करने पे, लेकिन अगर किसी ने नहीं माफ किया, किसने, हमारे शेख हैं उन्होंने, यानी टीचर हमारे, उन्होंने वहीं से सऊदी अरब से पढ़ा हुआ है, तो वो वहां का एक वाकया बता रहे थे। कहने लगे कि एक आदमी फौत हुआ वहां पे, तो उसकी बेटी को उसके फौत होने के बाद ना ख्वाब में वो आया कि बड़ी अजाब में, बड़ी तकलीफ में, बहुत मुश्किल में। तो वो घर आई, उसने अपनी माँ से भाइयों से पूछा कि भाई इस तरह मैंने बाप को देखा है, ऐसे क्या उन्होंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से इतनी तकलीफ हुई। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कुछ, हाँ ये एक बात थी कि उसने, बाप ने किसी की जमीन थी वो हत्याली भी थी, जमीन ही उनको दी थी, और बड़ा उनके साथ उनका झगड़ा चलता रहा था, इतने इसमें ही वो दुनिया से चले गए। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई उनके पास चलते हैं, तो वो उस बंदे के पास गए जिसकी जमीन इनके बाप ने हत्याली थी, और उसको कहा कि भाई तुम अपनी जमीन वापस ले लो, तो लेकिन हमारे बाप को तुम माफ कर दो। उसने कहा मैं तो नहीं माफ करता। उन्होंने बड़ी मिन्नतें की, उन्होंने कहा अच्छा इतनी नहीं, उससे डबल ले लो, तुम सारी ले लो, जो थोड़ा सा टुकड़ा था उसको छोड़ो, तुम सारी जमीन ले लो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा देते, हमारे बाप को तुम माफ कर। उसने कहा नहीं मैं तो नहीं माफ करता। अब उनको ना समझ आए कि वो क्या करें, तो वो उनके जो खानदान के कोई बड़े थे और कोई बुजुर्ग थे जिनकी बड़ी इज्जत थी, अब ये सारे बहन भाई मिलके उनके पास गए, उनको कहा कि आप हमारे साथ चलें, उनकी मिन्नत समाजत की, उनको कहा आप हमारे साथ चलें, आप जाके उनको मनाएं, उनको कुछ कहें। अच्छा वो बंदा ये कहता था कि इस आदमी ने मुझे इतनी तकलीफ दी है ना, तुम्हारे बाप ने इतनी मुझे तकलीफ दी कि मैंने कुछ चीज एक्सेप्ट ही नहीं करनी, मैंने उसको माफ ही नहीं करना, इसने मुझे बड़ा ही रुलाया, बहुत रुलाया इसने मुझे, मैंने नहीं इसको माफ करके देना। अब ये इनके पास कोई और चारा नहीं था, तो उन बुजुर्ग के पास गए। खैर उनको जब लेकर वो आए तो आगे क्या देखते हैं कि वो शख्स फौत हो चुका है, फौत हो गया। अब देखे ना, अब ये मामले कहाँ पे निपटेंगे? अब तो ये मामले कयामत के दिन ही निपटेंगे। जिसने माफ नहीं किया या जिसने माफ कर दिया या उनके दरमियान क्या मामला था, वो सब अब कयामत के दिन ही इसका फैसला होगा। तो उस दिन तक के लिए ना छोड़े, यहीं पे माफ करना सीख ले और अल्लाह से अजर पा ले। आगे जो मौजू आ रहा है वो टॉपिक इस चीज के ऊपर है कि बहुत दफा हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ अल्लाह पर ईमान लाना तो ठीक है, रसूलों पे कोई नहीं ईमान लाया तो क्या फर्क पड़ गया, इतनी भी क्या, ये बड़ी बात हो गई ना। और बाज़ लोगों का तो ये ख्याल होता है कि देखें जी रसूलों के वजह से, कि उसका ये रसूल है, उसका ये है, कोई ईसा अलैहि सलाम को मानते हैं, कोई मूसा अलैहि सलाम को मानते हैं, कोई नबी अलैहि सलातो वसलाम को मानते हैं, तो इसकी वजह से ये सारे झगड़े होते हैं। छोड़ो इन सारे झगड़ों को भाई, रसूलों के की तरफ जाओ ही ना, बस एक अल्लाह काफी है बस। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बताता है कुरान कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं? इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का, यानी अल्लाह का भी इनकार किया रसूलों का भी इनकार किया। और ये एक ये किस्म का कुफर है, जैसे बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला को भी नहीं मानते, उसका भी इनकार करते हैं, रसूलों को तो मानना दूर की बात है। व युरीदूना, और वो चाहते हैं, अन युफर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही, और बाज में ऐसे हैं जो कि वो चाहते हैं कि फर्क करें अल्लाह के दरमियान उसके रसूलों के दरमियान। अल्लाह रसूलों में फर्क तो जाहिर है, अल्लाह रब है और रसूल रसूल इंसान है। यहाँ पे फिर किस फर्क की बात आ रही है? यहाँ पे इस फर्क की बात आ रही है कि हम अल्लाह की तो मानेंगे रसूल की नहीं मानेंगे। उस जमाने भी में मुनाफिकीन का प्रॉब्लम क्या था, वो कहते थे अल्लाह की बात को हम मानेंगे, कुरान को हम मानते हैं, लेकिन ये रसूल ही तो, इनकी नहीं हमने मानी। उनके सामने थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी नज़र में नबी अलैहि सलाम की बातों की कोई वैल्यू नहीं थी, उनकी कोई इज्जत नहीं थी उनकी नज़र में, और बल्कि क्रिटिसाइज करते थे उनके फैसलों को। लो जी अब ये कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे जंग के लिए जा रहे हैं, अब ये अपनी कुव्वत तो देखें, अब ये क्या करने लगे, अब ये कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं, इस तरह की बातें करते थे। या तो अल्लाह की मानना और रसूल की ना मानना, इसी तरह आज के दौर के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम कुरान को मानते हैं लेकिन हम हदीस को नहीं मानते। तो फर्क किया ना अल्लाह की बात में और रसूल की बात में। वो यकूलूना, और बाज वो हैं जो कहते हैं नूमिनु बिबाद व नकफुरु बिबाद, हम बाज को तो मानेंगे, किन बाज को, रसूलों को, और बाज को हम नहीं मानते, इनमें ईसाई भी हैं इनमें यहूदी भी हैं। हम तो क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम कहते हैं हम रसूलों में किसी में फर्क करते ही नहीं है। हम ये डिक्लेरेशन करते हैं हर रात, ठीक है, हर रात हम ये डिक्लेयर करके सोते हैं। हम सूरह बकरा की जब आखिरी दो आयतें पढ़ते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि हम नहीं किसी रसूल में फर्क करते, सब रसूल हमारे लिए काबिले एहतराम है, काबिले इज्जत है। ऐसे नहीं कि वो अगर हमारे रसूल के बारे में कोई गुस्ताखी करते हैं, कोई क्रिश्चियन खड़ा होके हमारे रसूल के बारे में कोई बुरी बात कहता है, कोई कार्टून बनाता है, कोई, तो हम भी आशुरू हो जाए, हम भी ईसा अलैहि सलाम के इसी तरह गुस्ताखी शुरू कर दे, नहीं हम नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम सबकी इज्जत करते और सारे रसूलों का हम मकाम और मर्तबे को एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं। तो जो ऐसे करते हैं वह युरीदूना, और वो चाहते हैं यत्तखिदु बैना ज़ालिका सबीला, कि इसके दरमियान दरमियान कोई रास्ता निकाल लें। वो कहते हैं जी सारे ही अच्छा है, सभी अच्छा है, सारे ही तो भलाई का हुक्म देते हैं, देखो सारे दीन क्या कहते हैं। आप वो ये कहते हैं ना कि अच्छा करो, कौन कहता है बुरा करो, कोई कहता है कोई दीन आप उठा के देख लें, ये किसी मजहब को देख लें, हिंदुओं को देख लें, किसी को देख लें, सारे कहते हैं भाई अच्छा करो, अच्छा सारा के साथ अच्छा, अच्छा अमल करोगे सुकून पाओगे, वालदैन के साथ अच्छा करो, लोगों के साथ भलाई करो, सभी कहते हैं। तो कहते फिर प्रॉब्लम क्या है, कहते ये भाई ये रसूल है ना, ये प्रॉब्लम है, उनकी वजह से डिवीजन है। तो डिवीजन को छोड़ो,
वहदते अधियान करो, यानी एक सारे मजहब एक हैं जी, सारे ही मजहब ठीक हैं, सारे ही अच्छे हैं, एनलाइटेंड मॉडरेशन जिसको कह रहे हैं, कि दरमियानी रास्ता निकाल लो भाई, ये लड़ाई झगड़े छोड़ो, ये कोई इस तरह की बात नहीं है, सारा ठीक है, किसी को भी ना कहो कि गलत है। वो भाई कोई गलत है ही नहीं है, तो फिर इस्लाम क्या करने के लिए आया था, सारे ठीक है, फिर इस्लाम किस चीज का दर्स दे रहा है? फिर तो समझ लो कि कुरान जो कहता है कि दीन हक सिर्फ इस्लाम है, वो किधर बात चली गई? आपने तो कहा सारे ठीक हो गए। हाँ देखें, एक दो चीजों को समझे, इसमें फर्क है कि आपका काफरों के साथ क्या रवैया है, उनके साथ आपके हमसाए में रहते हैं, आपके कुलीग्स हैं, आप किसी के साथ ट्रेवल करते हैं, आपके कोई टीचर हैं, स्कूल बच्चों के स्कूल में कोई टीचर हैं, कोई आप वो गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ जो रवैया है वो नहीं है होना चाहिए कि आप वो उनको गालियां देते फिरें, उनसे नफरतें करते फिरें। मगर कुरान कहता है हमारा इस्लाम, हमारा दीन इस्लाम हमें उनके साथ भलाई का कहता है, अच्छाई के सलूक का कहता है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रिलीजन, अपने मजहब की कीमत पे नहीं। कि आप कहें कि नहीं भाई, मैं और आप सब एक हैं, आप भी एक हैं, हम भी एक हैं, हम सारे खुदा को मानते हैं। छोड़ो ये बहस रसूलों की बहस को ना, मैंने कि भाई आप ईसा अलैहि सलाम को मानते हैं, चीज को छोड़ो, हमारा खुदा तो सबका एक ही है ना, तो ठीक है हम सब एक हैं, तो इसलिए हम और आप एक हैं, ये इस्लाम नहीं कहता आपको करने को। तो इन दोनों में फर्क को समझे, दीन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि इधर लो इधर दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कर लेते फिर, वो तो कहते थे कि आप देखें इस तरह क्या झगड़े को छोड़ें जी, आप एक साल हमारे बुतों को पूज लिया करें, एक साल हम आपके खुदा को पूज लेंगे, आप एक दफा हमारे को पर भी हाथ रख दें, हमें हमारी भी कोई हौसला अफजाई हो जाए। अब ये क्या आपने बात कहनी शुरू कर दी कि सिर्फ ये ही ठीक है जो आप लेकर आए हैं और बाकी सारा गलत है? ये तो गलत बात हुई ना। आप भी तो थोड़ा हमारी तरफ भी कुछ नरमी, कुछ लचक, कोई तो थोड़ा सा इस तरह रवादारी कर रवैया करें, कि क्या आपने बस एक अपनी ही कि भाई यही बात हक है, तो आप सर मान लेते फिर। कुरान कहता है बार बार कि आप नहीं इनकी तरफ इंक्लिनेशन, आप नहीं इंक्लाइन हो इनकी बातों पे, इनकी ये चिकनी चुपड़ी जो बातें, इस्लाम कहता है कि इस्लाम हक है, ये कुरान कहता है ये कलमा हक है, इसके अलावा ये बातिल है, और हम कहते हैं कि नहीं सारे ही ठीक है। तो इस चीज को समझना है कि ये दरमियानी रास्ता कोई नहीं होता, आप उनके साथ अच्छाई करें, भलाई करें, वो बीमार हो उनको पूछें, उनको जरूरत है आपके हमसाए में रहते हैं हम उनको पूछें, लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि चलो दीन के मामले में ही आप कॉम्प्रोमाइज शुरू कर दें, आप ये कहना शुरू कर दें कि जी आपका भी एक्सेप्टेबल है दीन, हमें इससे कोई मसला नहीं, आप भी सही हैं और हम भी सही हैं, भाई तो आपने तो सारा फलसफा ही खत्म कर दिया फिर, क्योंकि इस चीज की आप उनको दावत दोगे, अगर वो भी सही हैं तो फिर ठीक है, वो सही, वो भी अपने घर में सही रहे, हम भी अपने घर में सही, तो ये सही नहीं है। ठीक है, हमारा ये ईमान है कि पिछले सारे मजाहिब जो हैं वो अब खत्म हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद किया अब कयामत तक के लिए, ये कुरान में है, कुरान की बातों को तो मानो। नहीं नहीं जी, वो भी देखें, वो भी तो एक खुदा को ही मानते हैं ना, आखिर में तो हिंदू भी जाके कह देते हैं भगवान एक ही है, आखिर में तो क्रिश्चियन भी तो आखिर एक खुदा को मानते हैं ना, वो भी तो ज्यूस भी तो मानते हैं, अल्लाह ताला का फैसला सुने आप, हम अपने जितने मर्जी फतवे देते रहे, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, उलाइका हुमुल काफिरूना हक्का, ये सारे पक्के काफिर हैं, उलाइका ये सारे लोग जितने भी ये कह रहे हैं ना, देखिए कुफर के भी इकसाम है ना, कोई कुफर है जिसमें अल्लाह को नहीं मानते, कोई कुफर है जिसमें अल्लाह को मानते रसूल को नहीं मानते, कोई कुफर है जिसके अंदर बाज रसूलों को मानते हैं, अब यहूदी सारे रसूलों को मानते हैं, ईसा अलैहि सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, ईसाई सबको मानते हैं, मूसा अलैहि सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहि सलाम सारे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना उन्होंने, तो बाज को मानना बाज को नहीं मानना सबका ही इनकार है, क्योंकि हर रसूल एक ही पैगाम लेकर आया, कोई डिफरेंट नहीं लेकर आए, ये कोई कुछ बोल ही बोल रहा था कुछ नहीं, सबका पैगाम में एक, जब आपने एक का इनकार किया तो सबका ही इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो पक्के काफिर हैं। अब इसके अंदर एक तो आपने ये बात समझ ली, और दूसरी एक बात इसके ऊपर भी दोबारा बात हम करते हैं कि जो लोग कहते हैं हम कुरान को मानते हैं हदीस को नहीं मानते, और हदीस हम वो ही मानेंगे जो हमारी अकल के मुताबिक है, तो याद रखें कुरान भी किसकी जुबान से अदा हुआ? आप कहते हैं कुरान को मानते हैं ना, कुरान किसकी जुबान से अदा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुरान को आगे लेकर चलने वाले कौन थे? वो भी इंसान ही थे ना, हमारे तक तो कोई फरिश्ते तो नहीं लेकर आए, वो भी तो इंसान थे। कहते हदीस बदल गई, हदीस में तो बहुत सी जो आपको क्या पता, हदीस तो लिखी ही नहीं गई, हदीस तो ऐसे हो गए जैसे अमानतदारी के साथ जिन्होंने कुरान को पहुंचाया वो अमानतदारी के साथ हदीस को पहुंचाने वाले नहीं थे। उनके किरदार पे अगर शक है तो उन्होंने ही तो कुरान भी पहुंचाया, आगे सहाबा, आगे ताबईन, आगे तबा ताबईन, आगे उनसे आगे लोग। तो ये कहां से फिर ये बात लेकर आ जाते हैं कि कुरान मानेंगे हदीस नहीं मानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी पेशीन गोई कर दी थी कि ऐसा वक्त आएगा कि एक आदमी होगा ऐसे टेक लगाए हुए और लोगों से कहेगा बस कुरान की बात है ना, बस वो मानो, हदीस नहीं माननी। तो उस वक्त पेशीन गोई कर दी थी। और ये लोग जो मुनकरीन हदीस है, ये बहुत बड़ा एक फितना है। और ये बहुत, अब ये देखिए ना, ये जहरा बिसू है, लेकिन ये वो बात है जिससे आपको आगाह करना जरूरी है। ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं हमारे यूथ में, हमारी जो यंग जनरेशन है ना उसके अंदर खास तौर पे ये काम कर रहे हैं कि उनको हदीस से, देखिए हदीस ही नहीं रही तो कुरान को समझ ही नहीं सकते, तो कुरान की मनमानी इंटरप्रिटेशन करें फिर, जो दिल करे किसका उठ के वो उसके माने करते। कुरान को समझ ही कुरान से सकते हैं और उसके बाद हदीस से। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसे फितनों से महफूज रखे हमें भी और हमारी नस्लों को भी। वअतदना लिलकाफिरीन अज़ाबं मुहीना, और ऐसे काफिरों के लिए हमने तैयार कर रखा रुसवाकुन अज़ाब, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहें, अपने आप को कहें नहीं जी हम तो मुसलमान हैं, तो मुनाफिक भी तो यही कहते थे, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है ये काफिर हैं। कुफर के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं मगर हैं ये भी काफिर, जो कि अल्लाह के, देखिए उस वक्त भी रसूल को मानने का ही तो प्रॉब्लम था, यहूदियों को भी तो रसूल को मानने का ही तो प्रॉब्लम है। आज अगर हदीस को ही डिसरिगार्ड कर दें, हदीस को ही नहीं मानना, तो रसूल की रिसालत को नहीं मानना। अल्लाह ताला जो कुरान पाक की हिफाजत कर सकता है, क्या हदीस की हिफाजत नहीं कर सकता? अगर कुरान ही अल्लाह ने बाहिफाजत सिर्फ भेजना था तो रसूल की जरूरत ही नहीं थी। रसूल किस लिए आए? ताकि इस कुरान को पढ़ के सुनाए, ताकि इसकी तिलावत करें, इसको समझाएं लोगों को, इसके जरिए तस्किया करें, इसलिए आया था ना, हमने पहले पढ़ा भी है रसूल के आने का मकसद। अब आप बताएं अगर रसूल की बात ही सेफ नहीं है और वो सेव्ड नहीं रही तो बाद की नस्लें क्या लेंगी? अब जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी रसूल ने नहीं आना, तो कौन बताएगा इसको, समझाएगा कौन इस कुरान को, कौन सिखाएगा अगली नस्लों को? इसके लिए हदीस का होना जरूरी था, और इसी वजह से और कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की बातें ही महफूज है, एक एक बात उनकी महफूज है, लेकिन फिर भी आज लोग इनकार कर रहे हैं हदीस का। तो इस फितने का, इसमें कभी इनकी बातों में नहीं आना, इस फितने को का मुकाबला करना है, उनको ये बातें समझानी जो बेचारे भोले भाले लोग इन लोगों की बातों में आ जाते हैं और फिर इनकार करने लगते हैं, तो बहुत बड़े अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं। तो आगे बढ़ के समझाया करें, अगर आपके सामने कोई ऐसे आ जाए, अगर सिर्फ कुरान ही काफी था ना, तो कुरान को अल्लाह ताला पहाड़ पे उतार देता, किसी रसूल की जरूरत ही नहीं थी, लोग कुरान लेके चलते रहते, इसी तरह हम तक भी पहुंच जाता। क्यों रसूल भेजा अल्लाह ने, क्या वजह थी? क्या अल्लाह मोहताज था किसी इंसान का कि वो बोल के सुनाए? तख्तियां उतर आती तौरात की तरह, किसी पहाड़ पे तख्तियां रखी होती, ले आते लोग वहां से, क्या मुश्किल था ये? तो फिर वो बताए ना रसूल का मकसद क्या था, क्यों आए थे रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का जरूरत क्या थी? ताकि हम उनकी जिंदगी से देखें कि कैसे चलना है। आप देखें कुरान तो एक एक किताबी शक्ल में है ना, इसको अप्लाई कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा, इसको अमल में कैसे लेकर आना है, वो है जो रसूल की जात हमें बताती है। अल्लाह ताला ने उनको नमूना बना दिया, उस्वाए हसना बनाया। कुरान कहता है कि वो तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो नमूना हमारे सामने अगर है ही नहीं तो हम तो अल्लाह को जाकर कह देंगे भाई हमारे सामने तो कुछ था ही नहीं, हदीस तो थी ही नहीं, हदीस तो ऑथेंटिक ही नहीं थी। तो ये क्या फिर हुज्जत नहीं बन जाएगी? अल्लाह ताला ने इसलिए उस जात की जिंदगी को जिंदा रखा है कि कयामत तक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से रहनुमाई लेते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए लेकिन आपकी जिंदगी महफूज है, आपकी एक एक बात महफूज है। और खुदा के लिए आप लोग ये जो मैं आपको बातें बताती ना, इनको जहन में बिठाएं, इनको याद कर लें, याद करना है तो। लेकिन ब्लैंक ना हो जाया करें, कोई आपके सामने कहे कि हदीस को हम नहीं मानते तो आप कहें हाँ हमने कुछ बात पढ़ी तो थी, कुछ क्लास में इसको डिस्कशन हुई थी लेकिन मुझे नहीं अब याद। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या जवाब देना है। ये भी रिसालत को डिफेंड करना है, पता है जो जो इस इल्म को हासिल करेगा दिफा करने के लिए इस दीन का, उसके कितने बड़े मकाम है। ये भी एक जिहाद है कि आप इस दीन के दिफा करने के लिए आज तलवारों से नहीं होता, आज इल्म से है, आप इसके मुजाहिद बने। ब्लैंक ना हो जाएंगे ना, बस हमने याद कर लिए, हमने लफ्जी तर्जमा याद कर लिया, बस टेस्ट दे दिया, आगे हमें कोई पूछे तो हमें कुछ पता ही नहीं, हम भी कह रहे हैं हाँ 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 वाकई पता नहीं सही कह रहे होंगे, क्या पता नहीं क्लियर हूं इस बारे में। ये देखो फलां जगह पे अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि उलाई का हुमल काफिर होना हक वा अतदना लिल काफिरीन अजाब मुहीना, रुसवा कुन अजाब है उनके लिए। और याद रखें काफरों का जो अजाब है वो अहानत के लिए है, वो उनको पाक करके जन्नत में दाखिल करने के लिए नहीं है। जो मुसलमान है उनको भी जहन्नुम में डाला जाएगा, लेकिन उनको जहन्नुम में डाला इसलिए जा रहा है ताकि उनको पाक किया जाए और फिर जन्नत में दाखिल किया जाए, जबकि वो कलमा गो है। काफिर का ऐसा नहीं है, काफिर का सजा के लिए, रुसवाई के लिए। वल्लदीना आमनु बिल्लाही व रसूलिही, और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। अब ये उनके ऑपोजिट बताया गया, वो पहले लोग कौन से थे जिन्होंने कुफर किया था। और कुराने पाक का स्टाइल ये है कि जहां पे जहन्नुम की बात आए तो जन्नत किया है, जन्नत किया है तो जहन्नुम किया है, इसी तरह यहाँ पे कुफर की बात आई तो अभी ईमान की भी बात आई। ये एक बैलेंस है जो कुराने पाक में। वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर उसके रसूलों पर, वलम युफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, और उनमें से किसी में फर्क नहीं करते, ये भी नहीं फर्क करते कि हम अल्लाह की बात को मानेंगे और रसूल की बात को नहीं मानते, हम ये भी नहीं फर्क करते, रसूलों में आपस में भी नहीं फर्क करते, सबको मानते हैं चाहे हमें उनका पता है या नहीं पता। अल्लाह ताला ने जितने रसूल भेजे इस दुनिया में हमें ये पता चलता है, कुरान पाक में तो सिर्फ 25 का ही जिक्र है, हमें पता चलता है कि 25 लाख रसूल आए, तो हम सबको मानते। उलाइका सौफ युतीहिम उजूरहुम, तो ये लोग हैं अनकरीब देगा अल्लाह ताला उनको उनका अजर। अच्छा, अब रसूल को मानने में क्या होता है? रसूल को मानना बस ये होता है हाँ हमने रसूल मान लिया, वमा अरसलना का मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल भेजे हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी इताअत की जाए अल्लाह के इज़्ज़त से। ये रसूल का मकसद है इताअत, कि आप उनको फॉलो करें। अगर फॉलो ही नहीं करना, जुबानी कलामी कहते जाना हमने बस मान लिया मान लिया, तो फिर क्या? तो जो रसूल आपकी तरफ आए वो इसलिए आए हैं ताकि आप उनके नक्शे कदम को देख के जैसे उनके जो जो उनकी जिंदगी के काम है उस तरह से आप भी चलें, उनको फॉलो करें। जैसे मैंने आपको बताया वो उनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि वो बेहतरीन नमूना है तुम्हारे लिए। नमूना फॉलो करने के लिए होता है, इसलिए होता है कि आप उनको आइडियलाइज करें, आप उनको अपना हीरो बनाएं, आप उनको सेलिब्रिटी बनाएं। सेलिब्रिटी का दर्जा हम इस हद तक तो दे देते हैं कि हाँ ठीक है उनका नाम आए तो बड़ा झूम झूम के नाम ले ही लेंगे, बड़ा बड़े मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। नहीं, आइडियलाइज करना ये होता है कि फिर उनकी हर बात को जैसे उन्होंने बताई उसके मुताबिक चला जाए। कान अल्लाह गफूर रहीम, और ऐसे लोगों से यहाँ से इशारा मिलता है गलतियां भी हर एक इंसान से होती हैं, ईमान लाने के बावजूद गलती भी होगी।
ऐसे इंसानों को अल्लाह ताला माफ भी करने वाला है, फिर रहम करने वाला है, इसलिए ये दो सिफात आई हैं एंड। देखिए जो सारी सिफात है ना अल्लाह ताला की आ रही हैं आयतों के एंड में, उनकी ऐसे ही नहीं कि बस कहीं अजीजन हकीमा लिख दिया, कहीं गफूर रहीमा लिख दिया, कहीं कोई और अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान फरमा दी, तो ये शायद ऐसे ही कहीं अस्माए हुस्ना पुर करने थे तो वो सारे इस तरह से कर दिए गए। ऐसा नहीं है, उसका रिलेशन होता है उस आयत के साथ, उस आयत के अंदर कोई बात ऐसी होती है जिसको वो समझ ले के हाईलाइट कर रहे होते हैं, वो अस्माए हुस्ना जो जो निचोड़ होता है उस आयत का, उससे रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही नहीं कहीं भी को रैंडमली कुछ लिख दिया जा रहा। यस अलुक अहलुल किताब। अब यहां से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, यहां से लेकर सेकंड लास्ट आया जो इस सूरत की है उस तक, क्योंकि आखिरी आयत तो विरासत की फिर बात पे आएगी, सेकंड लास्ट आया 175 तक आप देखेंगे अहले किताब की कुछ बातें हो रही हैं, और यहां से लेके 162 तक, तो बल्कि 169 तक तो आप देखेंगे खास तौर पे यहूदियों की बात है, 170 से 175 तक ईसाइयों की बात होगी, उनके अकीदे की बात, ईसा अलैहि सलाम के बारे में कुछ बातें आपको पता चलेंगी। मगर यहां अब ये अमूमी एक अहले किताब का ही बात आपके सामने रखी जा रही है।